मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 जनवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सबकी आदत अक्सर ये होती है, जो मैं समझता हूं कि गलत भी नहीं है, कि मान लीजिए कि मैंने 200 पेज की किताब पढ़ी तो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी बातें मेरी समझ में आ जाएं और याद भी रह जाएं। समझ में आने वाली बात तो समझ में आती है लेकिन याद भी रह जाएं। अगर मैं फिल्म देखने जाता हूं, 2 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म देखता हूं, तो वहां भी यही लगता है कि इस फिल्म की जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं समेट सकूं, अपने साथ ले जा सकूं, उतना ही बेहतर है। और आप जानते हैं कि फिल्मों की जो भाषा होती है वो तो बहुत ही गजब की होती है। फिल्मों के के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो भाषा के तो कम से कम बादशाह होते हैं। तो अक्सर मेरे साथ भी यही होता है कि लगता है कि इस फिल्म के जितने अधिक से अधिक वाक्य मैं याद कर सकता हूं उतने याद कर लूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई लेक्चर सुनने जाता हूं तो मुझे लगता है अगर कोई लेक्चर पसंद आ रहा है कि ये सारी चीजें मेरे मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। मित्रों, कुल कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये लगता है, हमें महसूस होता है या हम मानकर चलते हैं या अपेक्षा करते हैं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे साथ रहें, यानी कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। देखिए, विचारों की दृष्टि से, अपेक्षा की दृष्टि से ये कोई गलत नहीं है। अच्छी बात है कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में जीवन में ऐसा होता है? क्या सच में हम ऐसा कर पाते हैं? मैं आज इसी मुद्दे पर थोड़ी सी बातें, बहुत ही व्यावहारिक बातें आप लोगों से करने जा रहा हूं और मैं इसे भी एक प्रकार से अपने अनुभव के आधार पर ही विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा, समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, मैंने ये देखा है कि जब मेरे दिमाग के अंदर ये बात रहती, जैसे मान लीजिए मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी बातें मेरे मस्तिष्क में रह जाएं, तो मैंने महसूस किया है कि पढ़ते समय एक अलग किस्म का तनाव दिमाग में उत्पन्न हो जाता है, एक अलग किस्म का दबाव सा बनने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू के 50 पेज पढ़ लिए तो दिमाग में बात आएगी, एक विचार उठेगा कि यार उस 50 पेज में कितनी चीजें याद हैं, मैंने कितनी चीजें उसमें से समझी हैं। फिर मैं बीच में दोहराने लगता हूं मान लीजिए, और जब दोहराता हूं और लगता है कि नहीं, इसमें से बहुत सी चीजें मालूम नहीं है, तो मैं फिर अपना आत्मविश्वास खो बैठता हूं। और सच पूछे तो आगे के जो 150 पेज मुझे पढ़ने हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ और आनंद के साथ पढ़ने हैं, मैं फिर उसका लुत्फ नहीं उठा पाता, क्योंकि मुझे लगने लगता है कि फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है जब इसमें से थोड़ी सी ही बातें याद रहेंगी आगे चलकर, और हो सकता है कि कुछ भी याद न रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि सच पूछिए तो ज्यादातर ऐसा ही होता कि आगे चल करके कुछ भी याद नहीं रहता। कई किताबें मेरी ऐसी हैं जो मैंने कई कई बार पढ़ी हैं, इसके बाद भी बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, और जितनी बार उनको पढ़ते हैं उतनी बार उनमें कुछ नयापन मिलता है। खैर, तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, अंतिम नतीजा क्या निकलता है? परिणाम ये होता है कि बहुत सी चीजों को हम अवॉइड करने लगते हैं कि यार याद तो रहता नहीं तो चलो छोड़ो, क्या फायदा, उसका हम उपयोग कर ही नहीं पाते हैं तो चलो छोड़ो। और इस तरीके से हम अपने को ऐसी चीजों से विथड्रॉ करते चले जाते हैं। दोस्तों, यहां जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वह यह कि ये जो विथड्रॉ करने की जो हमारी आदत है और इसका जो मूल कारण है कि थोड़े में ज्यादा हासिल कर लें, या यूं कह लीजिए कि जितना है उतना सब कुछ हासिल कर लें, ये उसका मूल कारण होता है। और फिर अगर हम विड्रॉ करते चले जाते हैं तो अंततः उसका परिणाम भोगना किसको पड़ता है, किसके पास से चीजें खत्म होती चली जाती हैं, या जो आनी चाहिए वो आनी तो बंद हो ही जाती हैं, जो हमारे पास होती हैं वो भी चीजें धीरे 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 समाप्त होने लगती हैं। मित्रों, मैं आपको एक दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हमारे भोपाल में एक उर्दू ड्रामा फेस्टिवल हुआ, उर्दू ड्रामा फेस्टिवल 5 या 6 दिन का ये समारोह था जिसमें उर्दू के ड्रामा प्ले किए गए थे, दिखाए गए थे, प्रदर्शन उनका हुआ था। तो जब मेरी और डॉक्टर प्रीति से बात होने लगी कि ये देखने जाया जाए या न जाया जाए, क्या किया जाए, तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो सभी ड्रामा, सभी इसके नाटक हम लोग देखने चलेंगे। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं इतना ज्यादा नाटक प्रेमी नहीं हूं, वो तो खैर बहुत ज्यादा प्रेमी है, लेकिन मैं इतना नाटक प्रेमी नहीं हूं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये सभी नाटक देखने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि ऐसा कैसे, मतलब कि सभी नाटक आप देखेंगे? मैंने कहा कि हाँ, मैं देखूंगा, और सिर्फ इसलिए देखूंगा कि जो जितनी देर मैं नाटक देखूंगा उतनी देर मैं उर्दू भाषा के माहौल में रहूंगा। मतलब अब उर्दू का ड्रामा दिखाया जा रहा है, तो बट नेचुरल है कि वहां जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भाषा बोली जाएगी वो उर्दू होगी। तो नाटक कैसा भी हो, उसमें एक्टिंग कैसी भी हो, उसकी कहानी कैसी भी हो, डायरेक्शन कैसा भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब सिर्फ इससे है कि उर्दू मैं सुन रहा हूं, मतलब मैं अपना उतना वक्त उर्दू भाषा के साथ गुजार रहा हूं। ये बात अलग है कि उर्दू अच्छी है या खराब है, मुझे इससे भी मतलब नहीं। मुझे तो मतलब सिर्फ इससे है कि लगातार एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे तक मेरी चेतना पर, या कह लीजिए मेरे कानों में उर्दू भाषा की वर्षा हो रही है, उसका रस मेरे कानों में पड़ रहा है और मुझे उसका आनंद मिल रहा है। आनंद के साथ ही साथ एक बात और भी थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये कि बहुत से उर्दू शब्द जिनका इस्तेमाल करना मैंने बंद कर दिया है, जिन्हें मैं लगभग लगभग भूल चुका हूं, उन शब्दों को फिर से मुझे सुनने का मौका मिलेगा। यूं कह लीजिए कि जो भाषा के बीज मेरी जमीन के अंदर, दिमाग की जमीन के अंदर दबे हुए पड़े हैं, वो कम से कम इस वर्षा की बूंदों से उर्दू भाषा को सुनकर फिर से थोड़े से ऊपर की पपड़ी नर्म पड़ेगी और धीरे धीरे अंकुरित होंगे और मेरे इस्तेमाल में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर इसके लिए मुझे रोजाना दो घंटे, ढाई घंटे देने पड़े तो कोई बड़ा सौदा नहीं है। तो मित्रों, अब आप देखिए कि ड्रामा देखने के पीछे मेरा मकसद बिल्कुल भिन्न हो गया, और मैंने ये कहा कि अगर एक दो शब्द भी मुझे प्यारे से मिल गए जिनका मैं इस्तेमाल कर सका, याद कर सका, तो मेरे लिए वो बहुत हो गया। तो फिर ड्रामा देख करके आता था, कुछ शब्द जो जिनके अर्थ मुझे मालूम नहीं होते थे उन्हें मैं अपने दिमाग में नोट कर लेता था, दोहराता रहता था कि कहीं भूल ना जाऊं, और फिर घर में आने के बाद डिक्शनरी खोल करके देखता था कि इन शब्दों के अर्थ क्या होंगे, और इसके बाद उन शब्दों को नोट कर लेता था। तो इस तरीके से आप यूं कह लीजिए कि मेरी जो संपदा है, वो मेरी जो दौलत है, भाषा की जो दौलत है, उसमें कुछ तो इजाफा हो ही जाता था। तो अब आप देखें कि नाटक दो ढाई घंटे का एक नाटक है और उसमें मैं केवल दो तीन शब्द हासिल कर पा रहा हूं अपने लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर उस तरीके से सौदे को देखा जाए कि तीन घंटे में दो तीन उर्दू के शब्द, तो लगेगा ये तो बड़े घाटे का सौदा है। इससे तो ज्यादा अच्छा है कि हम डिक्शनरी खोल लें और दो तीन शब्द कोई भी छांट लें और उसे रटते रहें तो हमको मिल जाएगा, और ये सारा का सारा काम मुश्किल से 15 मिनट में लगेंगे, पूरा हो जाएगा। उसके लिए मैं ढाई घंटे का नाटक देखूं, थोड़ा सा वक्त जाने में लगाऊं, थोड़ा सा वक्त लौटने में लगाऊं, तो ये तो बहुत घाटे का सौदा है। लेकिन मित्रों, क्या सच में व्यावहारिक तौर पर यह घाटे का सौदा है? क्योंकि वो जो डेढ़ दो ढाई घंटे का आपको जो माहौल मिला है, लगातार जिस बारिश में, भाषा की बारिश में आप नहाए हैं, क्या उस आनंद की कोई बराबरी है? क्योंकि वो तो फिर आपकी चेतना में रच बस रहा है, वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाएगा, आपकी जुबान पर उस तरह से रच बस जाएगा जैसे हाथों में मेहंदी रच बस जाती है। मेहंदी तो छूट भी जाती है एक समय के बाद, लेकिन वो आपकी जुबान से तो नहीं छूटेगी, वो तो आपकी हमेशा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े उम्दा किस्म की दौलत हो गई। मित्रों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं है, चूंकि वक्त अधिक नहीं है तो मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना ठीक समझता। एक चलिए मैं और दे देता हूं। अचानक अभी बात याद आ गई कि जब मैं सर्विस में था तो मेरे साथ मेरे एक जूनियर थे, वो काम करते थे, मैं उनके साथ काम करता था, जो भी कह लीजिए। उनको मैं अक्सर अपने कमरे में बुला लेता था, अपने ऑफिस में बुला लेता था और उनसे बातें करना शुरू करता था। लोगों को आश्चर्य दो बातों पर होता था जो स्टाफ के लोग होते थे। पहला तो ये कि सर उनको इतना ज्यादा क्यों बुलाते हैं, ठीक है चलिए। दूसरा उनको आश्चर्य होता था कि बुलाने के बाद हमने ये देखा है, वो महसूस करते थे कि वो ज्यादा बोलते हैं, सर चुपचाप बैठे रहते हैं, वो क्या बोलता रहता है, सर क्या सुनते रहते हैं। तो ये अक्सर खुसफुस खुसफुस, थोड़ी सी खुसुर पुसुर इसके बारे में होती भी थी। तो जब भी खाली समय होता था मैं उनको किसी न किसी बहाने बुला लेता था। दरअसल मित्रों और कुछ बात नहीं थी, बात यह थी कि वो बुंदेलखंड के हैं और बड़ी खूबसूरत बुंदेली बोलते हैं, बहुत खूबसूरत बुंदेली। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बुंदेली लोक जीवन में जो कहावते मुहावरे हैं, जो बोलने का अंदाज है, वो हिंदी का जो अपना मुहावरा है, जो अपना स्ट्रक्चर है, उससे अलग है। और वो इतना खूबसूरत होता है और इतने नए नए होते हैं कि सुनकर मजा आ जाता है। तो मैं उन्हें बुलाता इसलिए था कि मुझे बुंदेली सुनने को मिलेगी, और मैं चुप इसलिए रहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बोल सके, नहीं तो बोलने का अधिकार तो मेरा था अफसर होने के नाते, मैं ही बोलता रहता और वो सुनते रहते और बेचारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मेरा मकसद तो पूरा नहीं होता। तो मैं बुंदेली के भाषा के ज्यादा से ज्यादा शब्द समझ सकूं, सुन सकूं, उनके लहजे को पकड़ सकूं, नए कहावते और मुहावरे अपने कोश में जोड़ सकूं, इसलिए मैं उनको बुलाता था। और सच पूछे तो कई बार तो ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं मिलता था, कई बार ऐसा होता था कि बहुत कुछ मिल जाता था। तो मित्रों यहां मेरे कहने का एक जो बहुत ही सिंपल सा जो मतलब है, सरल सा, वो ये है कि आप ये मत सोचिए कि हमने इतना कुछ इसको दिया तो इसके बदले में हमने पाया क्या। देखिए पाना तो हमारे अपने हाथ में होता है कि हम कितना पा सकते हैं, हम कितना लेना चाहते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर कि अगर हमें ज्यादा नहीं मिलने वाला है तो हम वहां जाएं ही ना, ये सोच मुझे लगता है कि हम सबको बदलनी चाहिए। और ये मानना चाहिए कि अगर वहां हमने थोड़ा सा भी पा लिया ना तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ ही, इस आप सबकी अनुमति के साथ कि शनिवार और रविवार को लाइफ मैनेजमेंट मैं आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकूंगा, तो आप सबकी इसके लिए मुझे अनुमति चाहिए, और साथ ही इस बात के लिए भी अनुमति चाहिए कि अब मैं लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त कर सकूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें मित्रों, नमस्कार।